ये आकाशवाणी है। अब आप दिव्या तोमर से समाचार सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर दिया है। इस बात की जानकारी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में श्री केजरीवाल का नाम लिया था और उन्हें 9 समन भेजे थे। ये गिरफ्तारी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केजरीवाल को एजेंसी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद हुई है। ईडी की एक टीम आज शाम उनके आवास पर पहुंची और तलाशी ली। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया गया है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस स्तर पर श्री केजरीवाल को राहत नहीं दे सकती। श्री केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के 9वें समन के बाद उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे। श्री केजरीवाल समन को गैर कानूनी बताते हुए निदेशालय के सामने पेश नहीं हो रहे थे। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली भाजपा ने आज कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से शराब घोटाले मामले में राहत नहीं मिलने पर यह स्पष्ट हो गया कि वो इस घोटाले के सूत्रधार हैं। निर्वाचन आयोग ने आज चुनावी बॉन्ड की विशेष संख्या सहित संबंधित डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इन नंबरों से बॉन्ड के खरीदारों का धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सहायता मिल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इनके बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की अलग अलग सूचियां अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की हैं। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अनुपालन का शपथ पत्र दायर किया। इसमें कहा गया कि अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण निर्वाचन आयोग को बता दिए गए हैं। शीर्ष न्यायालय ने इस सप्ताह के शुरू में भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का खुलासा करने को कहा था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। नामांकन प्रक्रिया कल शुरू हुई थी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। बिहार में नामांकन भरने की अंतिम तिथि 28 मार्च है। यह नामांकन पत्रों की जांच 30 मार्च को होगी। उम्मीदवार 2 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। बिहार में मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। दोनों राज्यों में मतदान 19 अप्रैल को होगा और मतगणना 2 जून को होगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निशित प्रमाणिक ने आज कूचबिहार के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। निशित प्रमाणिक गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। कल जलपाईगुड़ी संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का केवल 1 नामांकन जमा किया गया था। अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। तमिलनाडु में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन नीलगिरी से और तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन चेन्नई दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य में पार्टी प्रभारी के अन्नामलाई को कोयम्बटूर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इससे पहले पार्टी 267 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर चुकी है। स्विट्जरलैंड के बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी जापान की रुई हिरोकामी और यूना केटो से 17-21 16-21 से हार गई हैं। महिला सिंगल्स में आज देर रात पीवी सिंधु का सामना जापान की तोमोका मियाजाकी से होगा। पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अब से कुछ देर बाद किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला मलेशिया के जी जिया ली से और लक्ष्य सेन का ताइवान के चिया सिन ली से होगा। वहीं प्री क्वार्टर फाइनल में के जॉर्ज ने जापान के टी ओबायाशी को 21-18 21-19 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।